कीर्तन की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, और प्रेमानंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 4। यत्रा निर्जरा निरहादा निवृत्ता स्वना जिलकिकम सस्वता तप शिकरा ऋषिजा ध्रुम मंडला मंडितम। यत्र निर्जर निरहादः, यत्र निरहार यत्र निर्जर निरहादः निवृत्तस्वनजिल्किकम् सस्वतत शिखर ऋषिजद्रुम मंडलमंडितम्। यत्र निर्जर निरहाद निवृत्तस्वन जिल्किकम् सस्वतत् शिखर दृशिज सस्वतत् शिखर ऋषिज द्रुम मंडल मंडितम्। द्रुममण्डलमण्डितम् यत्र निर्जर निरहादः निवृत्तस्वनजिल्किकम् सस्वत्तत शिखर ऋषिजः द्रुममण्डलमण्डितम्। यत्रा जिस वृंदावन में निर्जरा चरणों की निराधा तीव्र ध्वनि ने निवृत्ता रोक दिया, स्वना ध्वनि झिलकिकम झिंगुरों की सस्वात निरंतर तत् उन झरनों की शिकरा जल की बूंदों से ऋषि जा भिगे द्रुमा वृक्षों के मंडला समूह से मंडितम सुशोभित। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य के द्वारा। वृंदावन में झरनों की तीव्र ध्वनि से झुंगुर की झंकार छिप गई और उन झरनों के हुंकार से निरंतर तरी हुई वृक्षों के समूह ने संपूर्ण क्षेत्र को मंडित कर दिया। तात्पर्य इस श्लोक में तथा अगले तीन श्लोक में वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु में भी वसंत के लक्षण प्रकट होने का वर्णन हुआ है। जय श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद महाराज की। तात्पर्य बहुत कम है, फिर से मैं दोहराता हूँ। इस श्लोक में तथा अगले तीन श्लोकों में वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु में भी वसंत के लक्षण प्रकट होने का वर्णन हुआ है। ओम ज्ञानति निरन्धस्य ज्ञानमञ्जनं श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण विष्णुपदीया पदपङ्कजपञ्जरान्त मदेव मे विशतो मानसराजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पीते कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते आनंदलीलामय विग्रहाय हेमं मदिव्या सभी सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य सुंदराय नमो नमस्ते चैतन्य सुंदराय नमो नमस्ते हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम जो दसवां स्कंद पर अभी चल रहा है वर्णन हो रहा है उसमें भी वृंदावन लीला जो कृष्ण बलराम की मधुर लीला बाल सखाओं के साथ पिछले अध्याय में हमने सुना कालियानाग का दमन और अग्निपान। इसमें दसवें स्कंद में दो बार भगवान ने अग्निपान किया है। एक बार जब हमने श्रवण किया कालियानाग का दमन किया, फिर बाद में जब उसी तट पर सब ब्रजवासी सो गए उसी समय अग्नि प्रकट हुआ था और भगवान ने उस अग्नि से सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। रक्षा करने के बाद सब नंदगांव चले गए। फिर बाद में हर रोज जो नित्य क्रम है भगवान का श्री कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ वन विचरण और गौचारण लीला प्रतिदिन का नित्य क्रम भगवान गौचारण कराते हैं। तो इसी क्रम के अनुसार इस 18 अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इस ग्रीष्म ऋतु के कारण अति तप्त वातावरण होता है। और प्रभुपाद कृष्ण बुक में लिखते हैं कि वृंदावन क्षेत्र में और ज़्यादा गर्मी होता है, ताप होता है, लेकिन भगवान होने के साथ भगवान होने के कारण उस ग्रीष्म ऋतु में भी वसंत ऋतु का महसूस होता था सभी ब्रजवासियों को। वैसे देखा जाए वैदिक गणना के अनुसार 6 ऋतुओं होती है। उसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। इसमें प्रथम शुरुआत करते हैं दूसरे श्लोक में ग्रीष्म नाम, जो इस ग्रीष्म ऋतु है उसी तरह 22वें अध्याय में भी वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी के हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका शेरु हवेशी मुंजा नाम कात्यानी व्रतम। हेमंत ऋतु हेमंत प्रथमे मासी जो माघ शीर्ष मास में शुरू होता है, हेमंत प्रथमे मासी हेमंत ऋतु के प्रथम मास जो माघ शीर्ष से शुरू होता है और उसी 2 महीने का एक ऋतु होता है। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु ये 2 ऋतु ठंडी के समय होता है। फिर बाद में 2 ऋतु आता है वसंत और ग्रीष्म। फिर बाद में आता है वर्षा और शरद। ये 6 ऋतु है हेमंत शिशिर वसंत ग्रीष्म और शरद वर्षा और शरद। छह ऋतु है, दो दो महीने का ऋतु होता है। तो इसी प्रकार हेमंत प्रथम मासी, हेमंत ऋतु जो मार्गशीर्ष ठंडी के समय होता है, उसी हेमंत ऋतु में नंद व्रज कुमारी का चेरु हव्यसी मुंजा नाम कात्यायनी व्रत, उसी ठंडी के ऋतु में हेमंत ऋतु में श्री गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी हेमंत ऋतु का वर्णन करते हैं और यहाँ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं। ये श्लोक उनके बाद तीन श्लोक में, चार श्लोक में इस ऋतु का वर्णन हुआ है। तो ग्रीष्म ऋतु अति तप्त होने के कारण, लेकिन वहाँ भगवान साथ होने के कारण वहाँ इस ग्रीष्म ऋतु का अभाव और वसंत ऋतु का महसूस होता था ब्रजवासियों को। तो यह प्रभाव है भगवान का कि जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ ऋतु या भौतिक गुण उस पर असर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आज के श्लोक में जो है वर्णन, ग्रीष्म ऋतु के कारण अति तप्त थे वहाँ, लेकिन इस झरने जो गिरी गोवर्धन के तलेटी थे, जो ऊपर शिखरों से झरना बहता था, उस झरना के कारण कुछ कुछ बूंदे उड़कर उस वृक्ष के ऊपर गिरती थी और उस वृक्षों के ऊपर बूंद गिरने के कारण अति सुंदर उस वृक्ष दिखते थे और उस सुंदर दिखने के कारण वो बहुत उस व्रज या उस वन बहुत सुंदर शोभायमान होता था। इस आज के श्लोक में इस तरह वर्णन है। जो सुंदर वृक्ष के कारण ही, वैसे देखा जाए तो वृक्ष के कारण ही वन सुंदर लगता है। अगर कितना भी बड़ा जंगल हो और उसमें वृक्ष न हो तो रेगिस्तान जैसा दिखता है, लेकिन वृक्ष होता है, वृक्ष के कारण ही वन सुंदर दिखता है। तो यह ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। और ऐसे ही देखा जाए तो वृंदावन धाम जो शाश्वत धाम है भगवान का, नित्य धाम, वहाँ इस भौतिक वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये शाश्वत धाम है भगवान का, दिव्य धाम होने के साथ भगवान का धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसका भी वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है, आदि लीला में पांचवें अध्याय में, सर्वांग अनंत विभु कृष्ण तनु सम उपर्य अध व्यापिया से नाही का नियम। सर्वांग अनंत विभु, ये भगवान का धाम है, वो अनंत है और सर्वसपूर्ण है। और कृष्ण तनु सम, भगवान के जिस तरह विग्रह है वैसे ही उनका धाम उनके समान है। और ऊपरे यध, ऊपर दिव्य लोक में या इस भौतिक जगत में जहाँ वृंदावन स्थित है भी, वो भी उसमें और जो दिव्य गोलोक धाम है उसमें कोई अंतर नहीं है। व्यापिया से नाहे के नियम, और उसमें वो भौतिक जगत का कोई नियम नहीं है। उस दिव्य धाम में जो ब्रज धाम है उसमें कुछ भौतिक जगत का नियम नहीं है। और इसी श्लोक को, इस प्यार को पुष्ट करने के लिए वहाँ श्री प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में जीव गोस्वामी के द्वारा प्रमाण करते हुए दो श्लोक और वहाँ कोटेशन में देते हैं। स्कंद पुराण से जीव गोस्वामी लिखते हैं कृष्ण संदर्भ में, या यथा भुवि निवृंते युर्यो भगवान प्रियो स्ताम तथा संकित वैकुंठे तद लीला अर्थनम आदिता। उस धाम में भगवान लीला करने के कारण जब अवतरण होते हैं तो अपना धाम भी वो साथ में लेकर अवतरण होते हैं। श्री जीव गोस्वामी स्कंद पुराण से ये श्लोक कहते हैं। और दूसरा श्लोक कहते हैं नारद पंचरात्र से, तत सर्वोपरि गोलोक तत्र लोकोपरि स्वयं विहरेत परमानंद गोविंद अतुल नायक। तत उस धाम में सर्वोपरि, जो भगवान सर्वोपरि ईश्वर है, वो जब इस भौतिक जगत में अवतरण होते हैं तब गोलोक तत्र, जो वो गोलोक है उसी गोलोक को इस धराधाम पर स्थापित करते हैं। विहरे तो परमानंद गोविंद, उस धाम में फिर विचरण करके या लीला करते हैं। तो इस दिव्य धाम ब्रज धाम है, और जो गोलोक वृंदावन में नित्य धाम है उसमें, और जो वर्तमान इस भारतखंड में उत्तर प्रदेश में स्थापित है जो मथुरा मंडल गोलोक वृंदावन उसमें, और उसको अंतर नहीं है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, प्रभुपाद इस तात्पर्य में इसका श्लोक को कोट किए हैं। तो इस धाम के कारण जो नित्य लीला भगवान अपने बाल सखाओं के साथ विचरण करते हैं और गौचारण करते हैं, उसमें इस स्थान पर जो यमुना नदी के तट पर और गोवर्धन के तलहटी में गौचरण करते हुए आते और सुंदर सुंदर वृक्ष देखते हैं, तब भगवान वृक्षों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वृक्ष इतने सुंदर है और वृक्ष का महत्व अनेक अनेक जगहों पर और भागवत में कई जगह पर उल्लेख हुआ है, उनका क्या महत्व है। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राण उपजीवनम सुजनस्य एव येषां वे विमुखा यान्ति न आर्थिनः। 22वें अध्याय 33 नंबर श्लोक में वर्णन करते हैं वृक्ष के बारे में। भगवान कृष्ण अपने मुख से कहते हैं कि अहो येषां वरम जन्म, यह वृक्ष का जन्म बहुत भाग्यवान है, वो भाग्यशाली है। तो सर्व प्राण उपजीवनम, सभी जीवों को प्राण प्रदान करने वाले है वृक्ष, और अनुजनस्य जीव येषां वे विमुखा यान्ति न आर्थिनः। अगर कोई वृक्ष के पास गया और कोई इच्छा है तो उस इच्छा को पूर्ण न करते हुए ऐसा कभी बना नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। कोई भूखा व्यक्ति जो वृक्ष के पास जाता है तो कोई फल कुछ ना कुछ उसको वृक्ष फल देते ही है। अगर कोई तप्त हुआ जाता है गर्मी के दिन में और वृक्ष के नीचे जाकर जो शीतल छांव में बैठता है तो उनको सुख प्राप्त होता है, और साथ साथ में जब वृक्ष सूख जाता है तो उनकी लकड़ी भी बहुत से सारे काम में आती है। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि अहो येषां वरम जन्म, इसका जन्म जो है वृक्ष का बहुत भाग्यवान है, भाग्यशाली है। कि सर्व प्राण जीवनम उपजीवनम, सभी प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाला है। उपजीवनम, तो वृक्ष का स्वभाव ऐसा का परोपकार करना ही, दूसरों को लाभ ही देना है वृक्ष का स्वभाव। और भगवान कहते हैं कि इसी तरह जो वृक्ष का स्वभाव है परोपकार करना ही, लेकिन मनुष्य जो कहीं कहीं ऐसे मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, दूसरों को जो मनुष्य जीवन मिला है उनके ऊपर उपकार करना परोपकार करना यह नहीं सोचते हुए अपने स्वार्थ के लिए अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन ये वृक्ष हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों पर परोपकार करने के लिए। तो वहाँ श्री प्रभुपाद लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत में भी इसी श्लोक को कोट किया है, वहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन जो है सारे मानव जीवन पर परोपकार करते हैं। किस तरह परोपकार, दान पुण्य या रोगी से रोग मिटाने का ऐसा परोपकार नहीं, प्याव बनाकर परोपकार करना पुण्य कर्म करना ऐसा परोपकार नहीं, हरिनाम संकीर्तन देकर सारे मानव जीवन को परोपकार करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ कि हरे कृष्ण आंदोलन सारे विश्व में सभी जीवों पर परोपकार करते हैं, कल्याण करते हैं, कि वास्तविक जो जीव का मंगल है वो हरे कृष्ण नाम के द्वारा ही मंगल होता है, अन्यथा कितना भी कोई उपाय कर ले वास्तविक मनुष्य का कल्याण कभी नहीं होगा, क्योंकि शरीर के लिए जो भी कार्य किया जाए वो इस भौतिक में उसको बंधन में डालने वाला ही होगा। पुण्य कर्म करेंगे या पाप कर्म करेंगे, जो हमें भौतिक बंधन में डालने वाला होता है वो वास्तव में हमारा कल्याण करने वाला कभी नहीं बनता, क्योंकि वो बंधन में डालने से ही व्यक्ति जीव बारंबार जन्म और मृत्यु ग्रहण करता है, और उनको हरेक जन्म में कहीं ना कहीं और कितने भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख सहन करना पड़ता है। इसलिए वास्तविक जो परोपकार है, वास्तविक जो कल्याण है जीव का, वो भगवान की भक्ति देकर या हरे कृष्ण महामंत्र देकर ही उसका वास्तविक कल्याण होता है जीव का। तो इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम अपने स्वार्थ के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम स्वार्थी या वृक्ष भी निम्न कहलाते हैं। तो भगवान अपने मुख से कहते हैं कि अहो वरम, ये वृक्ष भाग्यशाली है, क्योंकि दूसरों के लिए ही जीते हैं। कोई कोई तो उनको पत्थर मारते हैं फल तोड़ने के लिए, पत्थर सहन करके उनको फल प्रदान करते हैं। ये भक्त का जीवन ऐसा ही होता है, कहीं कहीं उनको कष्ट सहन करके भी वो दूसरों का मंगल ही करते हैं, जिस तरह से प्रभुपाद अपने जीवन में देखते हैं हम कि कितने कितने कष्ट सहन किया प्रभुपाद ने दूसरों का मंगल करने के लिए। 10 साल तक वृंदावन में आराम से भजन किया, भक्ति किए, लेकिन फिर जीवों का उद्धार करने के लिए, अपने गुरु का आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभुपाद हमेशा चिंतित रहते थे कि मैं कैसे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूं। और इसी वृद्ध अवस्था में श्री प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए। तो यह है वास्तव में जो अपने पर कष्ट सहन करके दूसरों को मंगल करते हैं, ऐसे आचार्य ही वास्तव में सभी जीवों का कल्याण करते हैं। और देखा जाता है श्रीपाद रामानुजाचार्य, वो हमेशा सोचते कि जीवों का कैसा कल्याण हो। एक बार वो अपने गुरु के पास गए विद्यापूर्ण के पास, और कितनी बार गए वो दीक्षा लेने के लिए, अपन विद्यापूर्ण उसको दीक्षा नहीं देते थे। 18 बार गए श्री रामानुजाचार्य पास, फिर बाद में उनको दीक्षा दिया और मंत्र दिया श्री रामानुजाचार्य ने चार्य को कान में, और कहा कि इस मंत्र को आप किसी को नहीं बताना। और रामानुजाचार्य ने कहा अगर बताऊंगा तो बोला यह सभी को कल्याण कर देगा, लेकिन यह गुह्य मंत्र है, जिस तरह गायत्री मंत्र होता है उसी तरह यह मंत्र गुह्य है, इसलिए सिप्त गुप्त ही इस मंत्र को रखना है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जब मंत्र ग्रहण किए अपने गुरु से, और उसी समय बड़ा ढोल लेकर आए उस श्रीरंगम में, और बड़ी ऊंची अटारी पर चढ़कर और बजाने लगे ढोल, और सभी नगरवासियों को एकत्रित किए। एकत्रित करके कहा कि सुनो, मैं आज महत्वपूर्ण, मैं तुम्हें एक संदेशा दे रहा हूँ, एक संदेश दे रहा हूँ। और जो अपने गुरु से मंत्र लिया था वही मंत्र वो प्रकट कर दिए पूरे नगर में, और कहा इसी मंत्र को आप जप कीजिए और इसी में आपका कल्याण और उद्धार होगा। और वो मंत्र था ओम नारायण नमो नमः। तो उस मंत्र को खोलकर पूरे नगरवासियों को दे दिए, और जब उनका ही गुरु भाई रामानुजाचार्य पाद का गुरु भाई ने सुना ये तो सीक्रेट मंत्र है, गुप्त मंत्र है, ये तो जाहिर में पब्लिक में पब्लिशन कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, तो दौड़ दौड़ कर गए उनके गुरु के पास और कहा जो आपने मंत्र दिया है रामानुजाचार्य को वो तो खुलेआम सभी नगरवासियों को बांट रहे हैं। तब उनको गुरु ने कहा कि उनको बुलाओ इधर रामानुजाचार्य बात को। तब रामानुजाचार्य गए और अपने गुरु को प्रणाम किए और कहा क्या आदेश है मेरे लिए। तो कहा तुमने जो मुझे मैंने जो तुमने मंत्र दिया था वो गुप्त था, सीक्रेट था, तुमने इसको ओपन कर दिया, जाहिर में सभी नगरवासियों को बांट दिया। तुम्हें पता है कि इसका फल स्वरूप क्या तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। उनके गुरु को कहा, गुरु ने कहा तुम्हें नरक जाना पड़ेगा कि तुम्हें इस मंत्र को नगरवासियों को सुना दिया। तब रामानुजाचार्य कहते हैं कि मैं एक जन्म नहीं 1000 जन्म तक नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, अगर इन जीवों का उद्धार होगा तो इसलिए जो आचार्य होते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए हमेशा सोचते हैं, और वास्तव में यही परोपकार है जो वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो मुक्त कराए और इस भौतिक बंधन से मुक्त कराकर वास्तव में जो जीव का स्वरूप है वो स्वरूप स्थापित करवा दे, वही जीवन जीवों के लिए परम कल्याण है। तो इस प्रकार इस वृक्षों की महिमा बताते हुए भगवान कृष्ण कहते अहो वरियम, ये वृक्ष महाभाग्यशाली के उनका जन्म है, वो मनुष्य के लिए हर एक जीव के लिए परोपकार करते हैं, पशु पक्षी के लिए, पशुओं के लिए भी और मनुष्यों के भी लिए, सभी जीवों के लिए वृक्ष परोपकार करते हैं। तो इस प्रकार वृक्ष की महिमा बताते हुए और आज के श्लोक में भी इस वृक्ष जो पूरे वन में मंडल मंडितम जो शब्द आया है पूरे वृक्ष को शोभायमान कर रहे हैं वृक्ष, तो इस वृक्ष के लिए महिमा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में नवमें प्रकरण में नवमें अध्याय में आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णदास के विराज गोस्वामी वर्णन करते भक्ति कल्प वृक्ष को वर्णन करते हुए इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस वृक्ष के मैं बीज आरोपण करता हूँ। सर्वांग अनंत विवे कृष्ण तनु सम माली है या वृक्ष है ला यही तो इच्छा ते सर्व प्राणी रूपकार है या वृक्ष है ते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं इस वृक्ष का आरोपण करके बीज आरोपण करके इस वृक्ष के माली बनकर उनका सिंचाई करूंगा और उसमें जो फल लगेगा वो फल सभी जीवों को मैं बांटूंगा, जो कृष्ण प्रेम धन रूपी फल है सभी जीवों को बांटूंगा। और साथ साथ में ये भी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि मैं अकेले से ये काम नहीं कर पाऊंगा, सभी जीवों को सभी मनुष्य को इस फल बांटने में मेरी सहाय करना होगा, यानी कि जो कृष्ण भावनामृत है उनका प्रचार करना होगा, जो कृष्ण प्रेम धन रूपी है फल उसको बांटना होगा पूरे विश्व में। वहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस वृक्ष का मैं मालिक बनकर उनकी सिंचाई करूँगा, उनका देखभाल करूँगा और साथ साथ में ये भी करूँगा अगर ये नहीं हो पाया तो मैं खुद वृक्ष बनकर उस जीवों का उद्धार करूँगा, जिस तरह वृक्ष परोपकार करते हैं दूसरों के लिए उसी प्रकार मैं भी वृक्ष बनकर दूसरों पर परोपकार करूँगा। माली है या वृक्ष है ना यही तो इच्छा थे सर्व प्राणी उपकार है यह वृक्ष है ते। सर्व प्राणियों पर उपकार करने के लिए मैं वृक्ष बनने के लिए भी तैयार हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यद्यपि मैं वृक्ष का आरोपण करता हूँ बीज आरोपण करके उनका जो फल लगेगा वो सारे जीवों में पात्र अपात्र देखकर सभी को मैं बांटूंगा, और यह नहीं कर पाया तो मैं खुद वृक्ष बनकर सारे जीवों पर उपकार करूंगा। तो यह है वृक्ष की महिमा, जो दूसरों को दूसरों के लिए ही वृक्ष जीते हैं या दूसरों के लिए परोपकार करते हैं। तो जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस भौतिक जगत में जन्म लेकर युवावस्था प्राप्त करकर फिर बाद में वृद्धावस्था प्राप्त करकर और मृत्यु हो गया तो उनका जीवन निष्फल है वास्तव में देखा जाए, क्योंकि जो अपना भी भला नहीं करते और दूसरों पर परोपकार भी नहीं करते। तो इस मनुष्य जन्म प्राप्त करके मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन सफल करे और जन्म सार्थक करी कर परोपकार, खुद का जन्म सार्थक करके दूसरों पर परोपकार करना चाहिए। परोपकार यही है कि कृष्ण भक्ति का प्रचार करना सबसे बड़ा महान कार्य है और वही वास्तव में परोपकार है, भगवान की भक्ति का प्रचार करना, कृष्ण भावना का प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु इसी को प्रचार करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन का प्रसार करने के लिए ही इस भौतिक जगत में अवतीर्ण हुए हैं, जो साक्षात ब्रजेंद्र कुमार है, जो ब्रजेंद्र है नंदन, वही चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए अवतारण हुए हैं। और इसी हरे कृष्ण आंदोलन का मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पुरीतयासी यदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रसार हो गए मोरो नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ऐसा समय एक दिन आएगा जो सारे विश्व में नगर और ग्राम में मेरा नाम का प्रचार होगा। तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने भी भविष्यवाणी की थी कि ऐसा एक सेनापति आएगा जो सारे विश्व में इस चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सार्थक या साक्षात्कार करेंगे। तो इस भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का जो परम शिष्य श्री अभय शरण भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने इस कार्य को संपन्न किए, जो सारे विश्व में जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी थी, नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रसार हो मेरा नाम, श्री प्रभुपाद ने ये सार्थक किया। सारे विश्व में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है जहाँ हरे कृष्ण नाम का उच्चारण न हो। तो ये प्रभुपाद वास्तव में परम परोपकारी आचार्य है, जो सारे जीवों का कल्याण करने का उपाय दिया इस घोर कलयुग में और इस आधुनिक युग में। इस समय जो सारे मनुष्य जीवन या सारे मनुष्य जाति आधुनिक सभ्यता के कारण अधोगति की ओर जा रहे हैं, कहीं कहीं आविष्कार होते हैं आधुनिक के नाम पर और मनुष्य को उसी को ही ग्रहण करते हैं। उस आधुनिक सभ्यता के कारण मनुष्य जाति या मनुष्य अपना वास्तविक कल्याण को भूल रहे हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद की कृपा से जो कोई भाग्यवान जीव है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, जो कोई भाग्यवान जीव है वही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के साथ साथ उनका भी प्रभुपाद की कृपा से वो भी प्रचार में लग जाते हैं। तो वास्तविक परोपकार कार्य यही है कि जो कृष्ण भावना या भगवान कृष्ण का संदेश, भगवद गीता का, श्रीमद् भागवतम का जो प्रचार करता है वही परम कल्याण कार्य है, वही सभी जीवों का मंगल करने वाला है। अन्यथा कोई भी कितना भी प्रयास करे जीव को सुखी करने के लिए, वास्तव में वो दुखी रहेगा। तो सुख प्राप्त करने के लिए, जो परम आनंद प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही परम उपाय है इस वर्तमान युग में। कलि काल नाम रूप कृष्ण अवतार, इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरण हुए हैं। तो वास्तव में जो कल्याण करने वाला कोई कार्य है तो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना वही जीवों का परम मंगल करने वाला है। और इसी प्रकार जो वृक्ष है वही परम मंगल या परम उपकार करते हैं सभी जीवों को, जो वह भगवान कृष्ण भी उनका वर्णन करते हैं। अहो वर्यम, उनका जन्म धन्य है जो दूसरों को परोपकार करते हैं, दूसरों का ही परोपकार करते हैं, सभी जीवों का, मनुष्य हो, पशु हो, पंखी हो, कोई भी हो, उनके शरण में जाता है तो न आर्थित हो, उनका जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हुआ ऐसा नहीं होता है, उनका पूर्ण इच्छा पूर्ण ही करते हैं जो वृक्ष के पास जाकर, जो वृक्ष का शरण लेते हैं। ऐसे वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण और बलराम गौचरण करते हैं और इस वृक्ष की महिमा बताते हुए भगवान अपने सखाओं के साथ इस वन में विचरण करते हैं और गौचारण करते हैं। और इस ग्रीष्म ऋतु में धूप तप्त होने के कारण भी, लेकिन वृक्ष के कारण वो वातावरण सुंदर और शीतल लगता है। जिस तरह कोई व्यक्ति बाहर बहुत धूप हो और कोई ऐसी में बैठता है और उनको शीतलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार इस वृक्ष के छांव में जब कोई जाता है तो उसको शीतलता प्राप्त होती है। तो इस आज के श्लोक में जो ग्रीष्म ऋतु है लेकिन वृक्ष के कारण उस झरना के जो बूंद गिरती है उस वृक्ष के पर, तो उस वृक्ष सुंदर लगते हैं। मंडल समूह, वृक्ष का समूह मंडितम, जो बहुत सुंदर लगते हैं और साथ साथ में उस ग्रीष्म ऋतु के तप्त से भी जो वसंत ऋतु का शीतलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस वन में शीतलता प्राप्त होती है। तो इस ऋतुओं का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो हमने सुना है पहले जो छह ऋतुओं होती है, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये छह ऋतु है। दो दो मास की छह ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि शैतर और वैशाख के माना जाता है, जून और जुलाई जो पाश्चात्य देश के हैं गणना उसके अनुसार। तो इस आज के श्लोक में जो द्रुम मंडल मंडितम, इस द्रुम जो वृक्ष बहुत सुंदर लगते थे क्योंकि वो झरना के बूंदों से उनके वृक्षों पर बूंदे गिरी थी, और इस वृक्ष के समूह मंडित होने के कारण सुंदर लगते थे और तप्त जो वातावरण था उनको शीतलता प्रदान करते थे। और वृक्ष का जीवन दूसरों के पर परोपकार करने के लिए है। तो इसी वन में, व्रज में भगवान कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गौचरण कर रहे हैं, और आगे के श्लोक में हम और भी इस ऋतु का हम वर्णन सुनेंगे। तो इसी प्रकार आज के श्लोक में तात्पर्य भी इतना नहीं था और ऋतु का वर्णन भी जो गहराई से अध्ययन करते हैं भागवतम का वही कर सकते हैं। हमने तो जो थोड़ा बहुत सुना था उस पर चर्चा किया, उसमें भी वो टूटी रह गए हो तो क्षमा कीजिए। एक दास समझ कर तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और प्रभुपाद की कृपा से हमें इस भागवतम का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसका लाभ लेना चाहिए और जितना हो सके उतना इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।